भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, पुरुष ने जन्म लिया एक दिव्य पुरुष।
ओम शांति। आज अपनी वच्चे राजयोगनी परम आदरणीय रतनमोयनी दादीजी उपस्थित छे। आपे नानपणथी ज आ ईश्वरीय ज्ञान में आपने खूब ऊंडो रस हतो, अने जेवु एमनु नाम छे एज प्रमाणे ज्ञान रत्नोथी खेलवानो रमवानो, એટલે કે જ્ઞાનના ઊંડાણમાં જઈને એક એક શબ્દનો ખૂબ સરસ મંથન અને ચિંતન કરીને પોતાના જીવનમાં ધારણ કરી એ રત્નોનું અન્ય આત્માઓને દાન આપવાનું। નાની જ ઉંમરમાં આપે જ્યારે ઐશ્વર્ય વિશ્વવિદ્યાલયની સ્થાપના 1936માં થઈ, ત્યારથી જ આ વિદ્યાલયમાં પોતાનું જીવન સમર્પિત કર્યું અને દેશ ને વિદેશમાં ઈશ્વરીય સેવા અર્થ પણ ઘણી વખત આપ ગયા છો। પણ એમાં એ સૌથી સારી વાત એ છે કે આ ઈશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલયનું પહેલું ડેલિગેશન જ્યારે વિદેશ સેવા માટે જાપાનમાં ગયો, એમાં પણ આ વિદ્યાલય તરફથી દાદીજી મોટા દાદીજીની સાથે હતા, અને વિદેશના જે ઈશ્વરીય સેવાનું સેવા કેન્દ્રોનું આરંભ થયું એમાં પણ પ્રથમ આપે લંડનમાં જઈને પોતાની સેવાઓ આપી છે। એવા શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિત્વ ધરાવનાર પરમ આદરણીય દાદીજી, અને આ ઈશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલયની રાજયોગ એજ્યુકેશન રિસર્ચ ફાઉન્ડેશનની જે જુદી જુદી વિંગ્સ છે, જેમ આપ ગ્રામ વિકાસ પ્રભાગના અંતર્ગત આ કાર્યક્રમમાં અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છો, એ જ પ્રમાણે યુવા પ્રભાગ, અને એ યુવા પ્રભાગના આપ અધ્યક્ષા છો। ભલે દાદીજીની ઉંમર આપણે જોઈએ છે, છતાં પણ આપની અંદર એક સ્ફૂર્તિ, એક ઉમંગ, એક જોશ જે યુવાનોને પણ એક વિશેષ પ્રેરણા આપે છે, અને આપણે સમજી શકીએ છીએ કે યુવાનોના જે સંસ્કાર હોય તોડફોડ, જેમ નિર્માણના પણ સંસ્કાર હોય તો તોડફોડના પણ સંસ્કાર હોય, એવા સંસ્કારોને પરિવર્તિત કરીને એમના જીવનમાં એક નવ ચેતના ને નવ સંચાર આપ આપો છો। બ્રહ્માકુમારી વિદ્યાલયની અંદર અમારા જેવા સમર્પિત બહેનો છે, એ બહેનોના શરૂ શરૂમાં ટ્રેનિંગના કાર્યક્રમ, એક રાજયોગ શિક્ષિકા આદર્શ બ્રહ્માકુમારી જીવન કેવી રીતે બનાવી શકાય એના માટે પણ આપ ટ્રેનિંગ આપો છો, અને ખૂબ અનુભવી તપસ્વીની દાદીજીનો આપણને લાભ મળ્યો છે। આપણે આ ખુશનુમા નુમા સંધ્યામાં કરતલ ધ્વનિથી દાદીજીનું સ્વાગત કરીશું। અને હવે હું દાદીજીને નમ્ર અનુરોધ કરું છું કે પોતાની અમૃતવાણીનો લાભ આપે દાદીજી।
ઓમ શાંતિ। સર્વશક્તિવાન ભાગ્ય વિધાતા ભગવાન કી પ્યારી સંતાન, ભાગ્યવાન આત્માએ આપ સભી જબ સે યહાં પહોંચે હૈ ઇતના તો જરૂર મહેસૂસ કરતે હોંગે કે આપકો યે ભાગ્ય જો એસી ધરણી પર આપ આયે હૈ, જહાં આને સે હી આપકો બડી શાંતિ ઓર આનંદ કા અનુભવ હોતા હોંગા। એસા હુઆ અનુભવ હુઆ, એસે મહેસૂસ કિયા, ઓર જબ એસા વાતાવરણ મિલતા હૈ તો કહા જાતા હૈ कि भाग्य से ऐसे स्थान पर जाना होता है और वहाँ जाने से समझदार व्यक्ति उसका लाभ सदा जीवन में कायम रहे, उसके लिए उस स्थान के अंदर क्या वाइब्रेशंस ऐसे किस आधार पर बने हैं, ऐसी क्या इधर की तपस्या कहें अथवा ऐसे जो लोग रहते हैं उनों के अंदर ऐसी शांति कैसे आई हुई है जिसका ये सारा वातावरण बना हुआ है। अगर ऐसी बातें आपके मन के अंदर जागृत हुई होंगी तो निश्चित रूप से आप इसका लाभ अपने जीवन में ऐसा ले पाएंगे जो आगे के लिए आप अपने जीवन में उसको कायम रख सको। अधिक सुनने से पहले, मैं समझती हूँ आप काफ़ी समय से यहाँ बैठे हैं, सुनते सुनते थक तो नहीं गए हैं। ज़रा अपने को देखना, क्योंकि जब अधिक समय सुनते हैं ना तो रिलैक्स हो जाते हैं, और रिलैक्स होने की मुद्रा कौन सी होती है? तो ज़रा आप सभी एक बार आवाज़ के बगैर उठ के खड़े हो जाइए, और ज़रा एक दो को मुस्कुराते हुए देखिए, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, और सब मुस्कुराते हुए चेहरे को एक दो को देखो और अपने को रिलैक्स करके फिर से बैठ जाइए। शुक्रिया। अभी फिर से हम उसी ओर चलते हैं जहाँ से हमें जीवन में सदा के लिए शांति, शांति हर एक चाहता है, परंतु अभी अगर अधिक समय शांत में बैठते हो तो जो शांति का आनंद चाहते हैं हम, वो फिर सुनते सुनते अब उस पर आप थोड़ा ध्यान देते रहना। वैसे तो दो दिन से जो आप सुन रहे हैं, ज़रूर है ध्यान से सुनते होंगे, और आपको सुनते सुनते ऐसे भी लगता होगा कि ये बातें कुछ नई है। भारत में माना जाता है ईश्वर की बातों के लिए सबको प्यार होता है, सब चाहते हैं हम भगवान की बातें सुने। इसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार से सत्संग करते हैं, कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु यहाँ यह जो ईश्वरी विश्वविद्यालय है, नाम है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। नाम ही जो भी दुनिया में विद्यालय के नाम है, यूनिवर्सिटी के नाम है, उन सबसे भिन्न है। परंतु इस नाम पर भी कोई सोचे कि ईश्वरी विश्वविद्यालय तो तब ही कह सकते हैं जहाँ ईश्वर पढ़ाता हो या जो ईश्वर ने आकर के स्थापन किया हुआ हो। तो यह ईश्वरी विश्वविद्यालय, जिसको हम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी कहते हैं, यह और सब विद्यालयों अथवा यूनिवर्सिटी से भिन्न है, विचित्र है। विचित्र अर्थात ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ इस प्रकार से आध्यात्मिक शिक्षा, केवल आध्यात्मिक शिक्षा, क्योंकि यह मनुष्य जीवन अध्यात्मकता पर आधारित है, ये मानेंगे ना आप सभी या नहीं? भौतिकता और अध्यात्मकता दो बातें मानी जाती हैं, तो यह हमारी जीवन जो है दोनों से संबंधित है ना? दोनों से, हम सब जानते हैं यह शरीर प्रकृति के पांच तत्वों का बना हुआ है, ठीक है बात? ये तो समझा हुआ है, जानते भी हो। और इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, वह चैतन्य शक्ति आत्मा है, जिसको अध्यात्मक कहा जाए। अध्यात्मकता का अर्थ जो अंदर आत्मा है उसका अध्ययन करना। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर आत्मा का अध्ययन और आत्मा के पिता परमात्मा की पहचान, केवल पहचान ही नहीं परंतु उस पिता के साथ जो हम सब मानते हैं परमात्मा हम सब का पिता है, मानते हो ना आप सभी? हम सब परमात्मा की संतान है, बोलते हैं ना हम सभी? अब जिसकी हम संतान है वो बाप परमात्मा पिता कौन है, कहाँ है, कैसा है, क्यों हम उसको पिता कहते हैं? और जब पिता कहते हैं तो उस पिता के साथ हमारा बच्चे और बाप के समान संबंध है। और अगर संबंध वो जोड़ा भी है तो फिर हम अपने आप से पूछे कि वो हम संबंधों के फर्ज नियम निभा रहे हैं। क्या जवाब आएगा हर एक को? अपने आप को जवाब दो, अपने आप से पूछो। अगर हम पिता के साथ परमात्मा सर्वशक्तिवान, परमात्मा पिता परम पवित्र, परमात्मा को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, रचयिता बाप की हम रचना, रचयिता कितना ऊंचा और हम रचना क्या अनुभव करती है? रचयिता बाप को, भगवान को, परमात्मा को सर्व का दुख हरता सुख करता माना जाता है। वह शांति का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, ऐसे पिता की हम संतान है। तो हम कौन हुए? प्रेम के सागर पिता की संतान, प्रेम स्वरूप आत्मा। आज हम सबको प्रेम अच्छा लगता है ना, प्यार अच्छा लगता है ना, हर एक चाहता है हमें एक दूसरे प्यार मिले, प्यार से बात करे, मीठे शब्द बोले, ऐसे सोचते हैं ना, हर एक की यही चाहना रहती है। साथ साथ जब हम ये अपेक्षा रखते हैं जो बात अच्छी है वो बात हमने अपने जीवन में कितनी अपनाई है। वैसे भी जब बाप हमारा ऐसा है तो कहा जाता है जैसा बाप वैसे ही बच्चे, ऐसे बाप की संतान हम भी सदा प्रेम स्वरूप बने रहते हैं, सर्व के प्रति प्रेम की दृष्टि, प्यार की दृष्टि, सर्व के प्रति सदा सुख देने की भावना, किसको भी हम कभी दुख न दे, किसके प्रति हम ऐसी बात न सोचे जिससे हमारे मन में भी अनेक प्रकार के विकल्प चलते रहे और दूसरे को भी हमारे से दुख की फीलिंग आती रहे। तो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर यह शिक्षा जो हमें परमात्मा पिता के द्वारा मिलती है, इसलिए यह नाम है ईश्वरी विश्वविद्यालय। यह विद्यालय वास्तव में कोई साधारण मनुष्य के द्वारा स्थापन किया हुआ नहीं है। आप कहेंगे ये जो भी कार्य चलता है तो मनुष्य ही तो चलाते हैं, मनुष्य ही चलाएंगे, परंतु मनुष्य के अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा है उनको जागृत करने वाला, उनके अंदर ऐसे गुणों की धारणा बनाने वाला वो है सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता, जो स्वयं सदा परम पवित्र है, सदा सर्व का सुखदाता है, जिस कारण उसको सदा कहा जाता है वो विश्व कल्याणकारी है। जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है ना भगवान वाच्य श्रोमणी भगवत गीता के अंदर, हम सब भारतवासी उन महावाक्यों को मानते हैं, जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब तब परमात्मा अति साधारण रूप में गुप्त रूप से आता है और आकर के विश्व का कल्याण करता है। पर किस गुप्त रूप में आता है, गुप्त रूप कैसे धारण करता है और फिर उसके द्वारा कैसे कार्य करता है, इसका वर्णन कोई भी शास्त्र के अंदर स्पष्ट रूप से नहीं है, जिस कारण कोई भी इन भेद को, भगवान के भेद को कोई भी नहीं जानता है। इसलिए भगवान ने कहा है मेरे स्वरूप का यथार्थ परिचय मैं स्वयं ही आकर के देता हूँ। भगवान का अंत कोई मनुष्य नहीं पा सकता है, स्वयं परमात्मा अपना अंत अपना भेद बताता है कि मैं कौन हूँ। परमात्मा जिसको हम इन आँखों से नहीं देखते हैं, देखते हैं, देखने में आएगा कितनी भी कोशिश करो, जब अपनी आत्मा को ही हम इन आँखों से नहीं देख सकते हैं। आत्मा परमात्मा की संतान है, जब हम अपनी आत्मा को इन आँखों से नहीं देख सकते हैं तो आत्मा का पिता परमात्मा उनको इन आँखों से कैसे देखा जा सकता है। कोशिश करते हैं भगवान को पाएं, ये भी मानते हैं उनको हम अंदर में दिव्य चक्षों के द्वारा देखेंगे, इन बाहर के शरीर की आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा। तो उसको दिव्य चक्षों के द्वारा देखने वाली वह आत्मा है, उस आत्मा की जागृति हमें ये स्मृति रहे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शरीर को चलाने वाली हूँ, मैं आत्मा कितनी परम पवित्र परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, यह जब स्मृति अंदर जागृत हो तब हम अपने परमात्मा पिता को पहचान सके अथवा पा सके। तो यह ईश्वरी विश्वविद्यालय परमात्मा पिता ने स्वयं स्थापन किया, पर जरूर है जो सृष्टि पर कार्य होगा उसमें तो मनुष्य शरीर चाहिए जरूर। जो भगवान ने कहा है मैं गुप्त रूप में आता हूँ, तो परमात्मा पिता जो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, परंतु ज्योति स्वरूप होते भी ज्ञान का सागर है, सारे सृष्टि के ज्ञान के आदि मध्य अंत की नॉलेज, सर्व मनुष्य आत्माओं की नॉलेज, हमारे सर्व जन्मों की जानकारी परमात्मा के पास है, जिस कारण कहा जाता है परमात्मा जानी जाननहार है। तो वह जानी जाननहार नॉलेजफुल ज्ञान का सागर परमात्मा जो यथार्थ रूप में निराकार है, अर्थात जिसको हम इन आँखों से नहीं देख सकते हैं, जिसका ये मनुष्य शरीर का रूप नहीं है, न देवताओं का स्वरूप है, परंतु वो ज्योति स्वरूप, अति प्रकाशमय स्वरूप, और वो प्रकाश जिसके अंदर पूरी नॉलेज, पूरी शक्ति, पूरे विश्व को जागृत कल्याण करने की शक्ति उसके अंदर समाई हुई है, वह सर्वशक्तिवान परमात्मा अपनी दिव्य शक्ति से मनुष्य सृष्टि पर अब अति धर्म की ग्लानी है। अब क्या है, कलयुग है ना, कलयुग का अंत है, अंत है या आद है, हाँ? अर्जुन, कलयुग कितने हजार वर्ष चलेगा, कितना हजार वर्ष चलेगा, चलेगा आगे पता नहीं, बहुत अभी जैसे कोई समझो बीमार होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना केस, डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, अब भाई ये बचने वाला नहीं है, अब जितने भी दिन निकाले, होता है ना ऐसा, कभी कभी तो वो कितने काफ़ी दिन भी निकाल देते हैं, और कभी अचानक जल्दी से उसका मृत्यु भी हो जाता है। तो अब ये जो कलयुग है, कलयुगी दुनिया की अब वो दिशा है जो अति हो चुकी है, हर एक समझता है अब तो ये दुनिया बदलनी चाहिए, अब तो ये दुनिया बदलनी चाहिए, अब तो पापाचार बढ़ गया है, अति पापाचार है, पापाचार है या पुण्यात्माएं है, क्या बोलेंगे, पापाचार है ना, हर एक चाहता है सत्यता को चाहता है, परंतु कहते हैं आज की दुनिया में सत्य से तो चल ही नहीं सकते है। क्यों, कोई भी सत्यवादी नहीं है, और न स्वयं में इतनी शक्ति है जो सत्यता के आधार पर चल करके कोई भी बात आए सामने सहन करता चले और अपनी सत्यता से चले, उसके लिए भी अपने में ऐसी शक्ति चाहिए। तो परमात्मा वो तो है ही सर्वशक्तिमान, वो स्वयं के दिव्य शक्ति से आज के कलयुग जो अपने अति अंत पर आकर के पहुंचा है, कहा जाता है अति के बाद अंत तो होना ही है, तो अब इस पतित दुनिया, पापाचारी दुनिया का अंत होने के समय परमात्मा पिता ने इसी सृष्टि पर गुप्त रूप में एक साधारण मनुष्य तन में, जिसको आप सामने देखेंगे पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर के द्वारा, उसमें अपनी दिव्य शक्ति से प्रवेश किया। बल पिताश्री का पहला जीवन तो साधारण ही था, जैसे गृहस्थी जीवन होती है, परंतु उस जीवन के अंदर भी वो अति भक्ति और कई गुरु भी किए, इसलिए कि हमें परमात्मा की पहचान हो। दादी जी आ गई है। तो पिताश्री तो गृहस्थी जीवन में रहते भक्ति करना, पूजा करना, गुरु करना, परंतु मन के अंदर यह खोज थी कि ईश्वर कैसे मिलेगा, वह कौन सी शक्ति है जो हमें चला रही है, सृष्टि को चलाती है, अंदर में वह खोज थी, खोज से गुरु भी किए, पर ऐसा कोई गुरु नहीं मिला जिसने इसकी इस बात का पूरा स्पष्टीकरण दे और ईश्वर का अनुभव कराए, चाहे साक्षात्कार के द्वारा, चाहे अपने द्वारा, किस भी रीति पर, वो ऐसा कोई नहीं मिला। लेकिन यह खोज होने के कारण और भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयत्न करते करते आखिरीन एक दिन पिताश्री को अचानक से अंदर से वह दीदार, एक दिन दीदार हुआ, और दीदार होने से जब उसने अपने गुरु से पूछा कि ये मुझे दीदार किसने कराया, उसने समझा गुरु ने कराया, पर गुरु को कुछ पता नहीं था, तो उसने कोई इतना पूरा अच्छी रीत जवाब नहीं दिया। पिताश्री समझ गए कि ये कोई और शक्ति है जिसने मुझे ये अंदर से ऐसा दीदार कराया। फिर तो उस खोज में एकांत में बैठना, उस पर चिंतन करना, वो पिताश्री की जीवन बन गई। और उस जीवन में जैसे पिताश्री को फिर से कभी ज्योति का साक्षात्कार, कभी श्री कृष्ण का साक्षात्कार ऐसे होते रहे, और पिताश्री उन्हीं साक्षात्कार से अंदर में उसी पर सोचना और उसकी साधना में लगे रहे। तब फिर एक दिन पिताश्री को अंदर से बहुत ऐसे आकर्षण हो रही थी जैसे मुझे कोई खींच रहा है। तब फिर जाकर के एकांत में बैठ गए, और काफ़ी समय एकांत में बैठने के बाद ऐसा महसूस हुआ, जब फिर वो एकांत में बैठे, क्योंकि उस दिन पिताश्री के पास उसने अपने गुरु को मंगाया था और बहुत बड़ा सत्संग था, लेकिन जब पिताश्री उसमें बैठे थे सत्संग में, अंदर से वो आकर्षण हो रही थी सत्संग से, उठ के पिताश्री जा करके कोई छोटे कमरे में बैठ गए और अपनी उस तपस्या में मग्न हो गए, मना उन्हीं खोज में लगे रहे। तब कुछ समय के बाद फिर उसकी घर में भी ज़रा सभी को विचार हुआ कि पिताश्री कहाँ गए, कभी सत्संग से उठे नहीं। तो देखा बाबा अंदर कमरे के अंदर है और एकदम समाधि के रीति से बैठे हुए हैं। तो ऐसी समाधि में बैठे बैठे पिताश्री को अंदर से साक्षात्कार ज्योति स्वरूप का, और ज्योति जब सर्वशक्तिवान ज्योति है तो अति प्रकाशमय। तो जब पिताश्री को घर से कोई देखने गया, क्योंकि ये हमें उन्होंने ही हिस्ट्री बताई, तो ज़रा सा देखा कमरा बिल्कुल जहाँ पिताश्री बैठे थे, पिताश्री भी आंखें तो बंद परंतु अति प्रकाशमय, उसका स्वरूप ही अति प्रकाशमय नज़र आने लगा, और कमरा भी ऐसे जैसे कि प्रकाश से भरा हुआ। और वह प्रकाश कोई ऐसा साधारण नहीं, लेकिन उसके अंदर बड़ी आकर्षण महसूस होने लगी। तो घर से जो देखने गए वो तो एक ही पिताश्री की बहू थी जो देखती रही बाहर से खड़े होके, वो तो वहाँ ही खड़ी हो गई और चुप से देखती रही क्या हो रहा है। कुछ समय के बाद पिताश्री के मुख से आंखें बंद है और उसी मस्ती में बैठे हुए हैं। तब पिताश्री के मुख से ब्रह्मोहम शिवोहम ऐसा ऐसे महावाक्य उच्चारण होने लगे। बस तीन बार वो महावाक्य उच्चारण हुए और फिर शांत हो गए। ऐसी ही शांत समाधि में बैठे हुए फिर पिताश्री को उसी में थोड़े समय के बाद साक्षात अंदर से वो आवाज़ होने लगा। उसके पहले बाबा को और साक्षात्कार हुआ कि जैसे कोई चमकता हुआ स्टार ऊपर से उतरता है और जब धरती पर आता है तो वो देवता स्वरूप बन जाता है। ऐसे तीन स्टार्स, एक दो पीछे एक आया देवता स्वरूप, फिर दूसरा स्टार धरती पर आया देवता स्वरूप, फिर तीसरा, ऐसे तीन स्टार्स ऊपर से उतरते और धरती पर आते ही वो देवता स्वरूप में हुआ। यह साक्षात्कार होने के बाद पिताश्री को अंदर से वो आवाज, ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है। उसके बाद थोड़ी ही पलकों के बाद पिताश्री की आंखें थोड़ी थोड़ी खुलने लगी, लेकिन आंखों के अंदर वह प्रकाश लाल लाल, और पिताश्री भी देखने, ये आवाज़ कहाँ से था, क्या था, वो अंदर का सोच, और बैठे रहे। धीरे धीरे वह समाधि से जागृत हुए, तब उनकी बहू को थोड़ा साइस हुआ देखने का अंदर। फिर तो ऐसी ही ध्यान अवस्था कहो अथवा उस समाधि के आनंद में, उसी चिंतन में ही मग्न रहे, और ऐसे ही फिर जाकर के उठ के और अपने कार्य में लग गए। फिर तो उन्होंने बताया उनको, और उसके बाद पिताश्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा कि ये कौन था, किसने ये सब कहा। उसी खोज में एकांत में बैठना, उस पर सोचना, और फिर बाबा को जैसे कि वो अंदर से ईश्वर की प्रेरणाएं, मानो कि शिव बाबा उनको अंदर सारी प्रेरणाएं देते गए, जो जो बाबा को अंदर प्रेरणाएं आती गई वो बाबा लिखते गए, और फिर परिवार के अंदर थोड़ा थोड़ा जब एकांत से आते थे या बैठते थे उनको, तो थोड़ा थोड़ा उनको बताते रहते, क्योंकि उसके अंदर पिताश्री के जीवन में वो परिवर्तन आने लगा। जब उस खोज में और उस मस्ती में रहे, तो घर में चलते भी जो भी परिवार के सदस्य थे उनको भी बाबा से ऐसी आकर्षण आने लगी कि अब बाबा के अंदर कोई विशेष शक्ति नज़र आती है। उसके बाद भी बाबा को कुछ कुछ साक्षात्कार एकांत में बैठने से, कभी विनाश का साक्षात्कार, कभी स्वर का साक्षात्कार, ये सब देखते जैसे कि बाबा को ये प्रेरणा हुई कि अब ऐसी दुनिया, जब ये पुरानी दुनिया ऐसे विनाश होने वाला है, एक तरफ आग लग रही है, एक तरफ सिविल वार हो रही है, जो हमारा एक चित्र भी बना हुआ है जिसमें वो सब दृश्य दिखाए हुए हैं, ये सब देखते जैसे कि इस पुरानी दुनिया से वैराग, और ये जो भगवान का आदेश है हमको, अब वो करने के लिए क्या करना होगा, वो आप ही हम बाबा को प्रेरणा आती रही, और उसी रीति से अपना करते रहे, जिस कारण फिर सारा अपना जो भी बाबा व्यापार करते थे, जवाहरात का धंधा, कुछ समय के बाद फिर बाबा ने उसको समेटना शुरू किया और सर्व संपत्ति इस कार्य में लगा दी। उसके बाद यह इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की, जिसको उस समय हम अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते थे, रुद्र अर्थात शिव परमात्मा, रुद्र भगवान के द्वारा ये प्रजापिता ब्रह्मा से ये रचाया हुआ यज्ञ, जिसके अंदर स्वयं परमात्मा पिताश्री के द्वारा यह ज्ञान की नॉलेज देते रहे। धीरे धीरे पहले परिवार में, परिवार सुनता था तो आपस में एक दो से बातचीत करते हैं, ऐसे धीरे धीरे आसपास वाले पहचान वाले आते रहे, और जब कमाल तो ये थी उस समय, पहले तो सिर्फ बाबा को साक्षात्कार हुआ, परंतु जो भी आते थे और बाबा के सामने आने से देखने से, वो फौरन उनको फौरन बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार होने लगा, किन्नों को ज्योति का साक्षात्कार, किन्नों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार, बल्कि किन्हों को जिन्होंने कभी देखा भी नहीं था, वो उन्हों को घर बैठे जो भक्ति करते हैं, अति भक्ति करते थे, तो किन्हों को घर बैठे भक्ति करते करते कृष्ण का भी साक्षात्कार और साथ में पिता श्री ब्रह्मा का साक्षात्कार। यह पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी शिव बाबा ने ही पिता श्री के ऊपर रखा, जिस नाम से फिर आगे चलता रहा, और उसी के कारण जब उन्हों को वो साक्षात्कार घर बैठे जबकि पिता श्री को देखा नहीं था, और वो साक्षात्कार होने के बाद कृष्ण का इशारा कि इसके पास जाओ इशारे से, क्योंकि दिव्य दृष्टि में आवाज़ से बोलना तो होता ही नहीं है, वहाँ तो ये पांच तत्वों का शरीर नहीं परंतु वो प्रकाश की काया होती हैं, और जिसके द्वारा ऐसे इशारों से इशारा कि इसके पास जाओ, और जब वो पता करके आते थे और पिताश्री के सामने आए, रूप वो ही साधारण लेकिन एकदम से देखने से वो श्री कृष्ण का साक्षात्कार होने लगा। ऐसे धीरे धीरे यह बात बढ़ती गई, जो आवे उसको अधिकतर श्री कृष्ण का साक्षात्कार, किसको विष्णु का साक्षात्कार, किसको ज्योति का साक्षात्कार, तो जो भी आवे, पर कोई अकेली माताएं आए वो फिर घर में बताए, कोई भाई भी आते थे तो उनको भी होता था, तो शुरू में अनेक परिवार के परिवार, बल्कि ये जब शुरू में हैदराबाद सिंध में ये शुरू हुआ, वहाँ पर तो थोड़े समय के अंदर जैसे कि पूरा हैदराबाद के अंदर जो भी परिवार वाले, अच्छे अच्छे परिवार वाले अधिक मात्रा में आते गए, और वहाँ अच्छी रिमझिम रिमझिम माना कि वहाँ अच्छी ये ज्ञान वर्षा होती रही, बल्कि जो जो ये ज्ञान सुनता रहे और समझता रहे, क्योंकि आत्मा की पहचान, आत्मा के गुणों की पहचान, ये तो आप लोगों ने लेसन आत्मा का सुन लिया होगा, इसलिए मैं उसको उस बात को रिपीट नहीं करती हूँ, परंतु इस बात का आपको ध्यान रहे, जो जो लेसन आप सुनते जाओ उसको सुनने के बाद आप अपने अंदर में उसका चिंतन ज़रूर करो, क्योंकि अगर सुन करके भले आपको लगेगा आत्मा परमात्मा शब्द सुने हुए है, समझ में आ जाता है, परंतु यहाँ उसको अच्छी रीत समझ करके स्वयं को ऐसा निश्चय करना है, स्वयं को आत्मा रूप में अनुभव करना है, और अपने आत्मा के गुणों को अपने जीवन में जागृत करते अपने कर्मों में उन गुणों को लाना है। उसके लिए जितना जितना हम इन बातों पर चिंतन करेंगे, अंदर से अच्छी रीत उसको समझने का प्रयत्न करेंगे, जब हमारे समझ में पूरी बात आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली हम अपने जीवन में उनको लाने का प्रयत्न करते रहेंगे। जब हम उन गुणों को अपने जीवन में लाते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि बरोबर जीवन के अंदर कितनी शुद्धि, पवित्रता, विचारों में शुद्धता, व्यवहार में शुद्धता, आपस में एक दो को देखते हुए वह दृष्टि बन जाएंगी, ये सब भगवान के बच्चे हैं। तो जो भी अंदर में वैर, एक दो के प्रति ईर्ष्या, ये जो भी ऐसे भाव आते हैं वो अपना दूर होते जाएंगे, परंतु तब जब हम जो सुने उसको अच्छी रीत से मनन करें, भल चलते फिरते खाते पीते उन्हीं बातों पर हमारा चिंतन चलता रहे, आपस में मिले वही बातें आपस में करते रहें, क्योंकि जैसे जब कोई नई बात मिलती है तो बार बार याद आती रहती है, जो भी नई बात और अच्छी फायदे वाली मिलती है तो एक दो को सुनाते रहते हैं, तो भाई ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, इससे मुझे जीवन में बहुत फायदा हुआ है, ऐसे करके और उसको खुशी खुशी से और को भी सुनाते हैं, उनको भी उस बात का लाभ मिल जाए, ऐसी अंदर की भावना बन जाती है। तो जैसे अपनी सर्व के प्रति भावना, कल्याणकारी भावना, शुभ भावना बनती जाएंगी, तो ये शुद्धता जितनी जितनी अपने में जागृत होती जाएंगी, उतना उतना हमारे जीवन से जो कुछ बुराइयां हैं, जो विकार है, जो मन समझता है मेरे में नहीं होने चाहिए परंतु उसे छूट नहीं सकता है, क्यों? आत्मा के अंदर शक्ति नहीं है, शक्ति न होने के कारण वो बुराइयां हमारे से छूटती नहीं है। परंतु जब हम अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं, परमात्मा पिता को पहचान करके उनकी शिक्षाओं को धारण करते जाते हैं, तब हमारे जीवन के अंदर शुद्धता आती है, जिससे हमारे में परिवर्तन आता है, जिस परिवर्तन से स्वयं भी खुश होते हैं और दूसरों को भी लगता है अब इनों की जीवन तो बड़ी अच्छी हो गई है। ऐसी जीवन जबकि हम इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए हैं, इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की ये विचित्रता, विचित्रता अर्थात जिसका चित्र कोई नहीं नजर आएगा, देखने में कुछ नहीं आएगा, परंतु जीवन के कर्मों में नजर आएगा, जीवन परिवर्तित हो जाएंगी और वो परिवर्तन स्वयं को भी खुशी देगा, दूसरों को भी खुशी देगा, उसकी शक्ति हमें अपने में महसूस होगी, उस शक्ति से हम अपने मन को ईश्वर पिता में लगा सकेंगे। अब जो हम चाहते हैं आप सबको अनुभव होगा, भले आप भक्ति करते हो, भगवान को याद करते हो, कोई मंत्र जपता होगा, कोई गुरु किया हुआ होगा, परंतु मन भटकता रहता, अंदर में मंत्र रटते रहो, मन एकाग्र नहीं हो पा, होता है एकाग्र? कहते हैं भाई मन तो बड़ा चंचल है, मन तो घोड़े के समान है, मन का लगाम हाथ में आना बड़ा मुश्किल है। बोलने वाला कौन? बोलने वाली आत्मा, जो अपने आप को भूली हुई है। अभी हम अपने आप को क्या समझते हैं? पहचान आ गई तो कहेंगे आत्मा है, और नहीं तो पूछो आप कौन, क्या बोलेंगे? जो शरीर का नाम है। तो पांच भूतों का बना हुआ शरीर, हमने उसको अपना लिया, मैं फला रहा हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं परमात्मा की संतान आत्मा हूँ, ये भूल गया तो वो आत्मा की शक्ति अपने में नहीं रही। अब परमात्मा से पहचान मिलने से जब वो अपनी शक्ति जागृत होती है, तो आत्मा अपने परमात्मा पिता को पहचान करके उनकी याद में रह के उनकी शिक्षाओं को धारण करते अपने जीवन को बाप के शिक्षा के अनुसार बनाने का प्रयत्न करती रहती, जिससे मन की एकाग्रता बनती जाती है, मन उस एक ईश्वर में लगा रहे। एकाग्र चित्त माना अपना चित्त, अपना मन, अपनी विचारधारा एक परमात्मा में लगी रहे, परमात्मा पिता के सिवाय और किसकी भी याद न आवे। जितना समय हम ईश्वर में अपने मन को लगाएंगे, एकाग्र करेंगे, शक्ति हमको उसी से मिलेंगी, क्योंकि आत्मा ने अपनी शक्ति खो दी है। सर्वशक्तिवान तो है ही शक्तियों का भंडार, वो तो हमें शक्ति देने के लिए ही आया हुआ है, परमात्मा पिता का कहना है, हे मेरे मीठे बच्चे, अभी समय आया है जबकि इस दुनिया को अभी परिवर्तन होना ही है। हम सब जानते हैं यह हमारा भारत स्वर्ग भूमि था या नहीं था? मानते हो कि ये हमारा भारत स्वर्ग था? मानते हो? बोलो, था भारत स्वर्ग। स्वर्ग की निशानियां है कि हमारे पूज्य देवताएं, देवताओं को मानते हैं? जो मानते हैं वो हाथ उठाओ। जो देवताओं को मानते हैं, देखो मेजॉरिटी क्या, सभी हाथ उठा रही है। तो हम सब देवताओं को मानने वाले, और क्या मानते हैं? ये देवताएं हमारे पूज्य है ना, हमारे पूज्य है, और हम उनों की वंशावली है। इन्हीं देवताओं का, इन्हीं लक्ष्मी नारायण का, श्री लक्ष्मी श्री नारायण इन्हों का इसी भारत पर, इसी सृष्टि पर राज्य था। जब उन्हों का राज्य था, यह भारत सुख संपन्न था। उन्हों की जीवन के लिए गाया हुआ है निरोगी काया, कभी अकाले मृत्यु नहीं। वे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, वे हमारे पूर्वज है, हम उन्हों की वंशावली है। पूर्वज को मानते हैं हम, परंतु पूर्वज के समान हम वंशावली अपने जीवन में कर्म करती है। वे सर्वगुण संपन्न, और हमारे में कौन से गुण हैं? 5 विकार है ना, 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, देह का भान, और दृष्टि वृत्ति चंचल। शरीर भान के कारण कभी गुस्सा, कभी ईर्ष्या, कभी मतभेद, कभी कुछ, ये होता ही रहता है, होता रहता है ना। ये तो हम सब मानते हैं ना, मानते हैं या नहीं? अब यह ईश्वरी विश्वविद्यालय हमें इन सब, क्योंकि ऐसे कर्मों से विकार मनुष्य को दुख देता है, विकार के वश जो भी हम कर्म करते हैं, देह भान में आकर जो भी कर्म करते हैं उससे हमको दुख मिलता है, क्योंकि इच्छाएं हमारी बनी रहती है। इच्छाएं होने के कारण, इच्छा वश कभी स्वार्थ भाव से काम करेंगे, इच्छावश कभी किसको धोखा देने का काम करेगा, क्योंकि अपनी इच्छा पूरी करनी है। तो जब तक हमारे में इच्छाएं बनी हुई है, इच्छाएं वाला मनुष्य कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता, क्यों? सदा वो अतृप्त है, सदा चाहिए चाहिए मांगता ही रहता है। भगवान से भी मांगेगा, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। अब चाहिए 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 तो कभी भी वो अपने जीवन में संतुष्ट नहीं होगा। परंतु परमात्मा पिता हम आत्माओं को वह शक्ति देते हैं जिससे स्वयं के समान हमारे अंदर शुद्धता, शुद्ध वृत्ति, शुद्ध दृष्टि बना करके हमें अपने जीवन के अंदर उन गुणों की धारणा कराते हैं जिन गुणों के आधार पर यह विकार छूटते जाते हैं। जब हम गुणों के आधार से कर्म करते हैं, वो कर्म हमारा श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ कर्मों का फल श्रेष्ठ ही मिलता है, अर्थात खुशी और सुख का अनुभव कराता है। तो मन के अंदर शांति बनी रहती है, नहीं तो इच्छावश हम जो भी कर्म करते हैं तो कई विकार के वश कर्म करने के कारण उसमें हमें कोई प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है, जिस कारण दुख और अशांति बनी रहती है। इसलिए हम कहेंगे कि जब के आप ऐसे ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए हैं, ये भाग्य आपको मिला है, भले आपको अभी कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, परंतु जो नॉलेज आपको दी जाती है, देखो ये भी वंडर है ना, इस विद्यालय के अंदर चाहे बूढ़ा है, चाहे बड़ा है, चाहे छोटा है, चाहे बच्चा है, चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे भाई है, चाहे बहन है, सब एक ही क्लास के अंदर पढ़ते हैं और एक ही पढ़ाई पढ़ते हैं, एक ही पढ़ाने वाला है। हम सबको एक परमात्मा ने पढ़ाया है और वही पढ़ाई हम आपको बताते हैं। देखो इस विद्यालय के अंदर कोई पुस्तक पढ़ाया नहीं जाता है, है कोई पुस्तक? और सत्संगों में जाएंगे तो कोई ना कोई शास्त्र तो पढ़ाते हैं ना, शास्त्र भी पढ़ पढ़ के कितने बड़े बड़े टाइटल ले लेते हैं। यहाँ कोई टाइटल, इस दुनिया का कोई टाइटल नहीं, परंतु पढ़ाई कितनी ऊंची, कितनी ऊंची है। इस पढ़ाई से हम क्या बनते हैं? मनुष्य से दैवी गुण संपन्न देवता बनते हैं। जिन देवताओं को हम पूजन करते हैं, जो देवताएं स्वर्ग के समय ऐसी सृष्टि पर राज करके गए हैं, वो देवताएं कभी तो थे ना, और उन्होंने इतना ऊंचा जीवन बनाया, जरूर कोई कर्मों से बनाया होगा। सोचने की बात है, क्योंकि मनुष्य जीवन में कोई भी प्राप्ति है तो कर्मों के आधार पर है। कहा जाता है जैसे कर्म करेंगे ऐसा ही फल पाएंगे, मानते हो ना इस बात को? हाँ, इस जन्म में जो हमने कर्म किया उसके अनुसार हमारे संस्कार बनते हैं, उन संस्कारों के अनुसार हम दूसरा जन्म पाते हैं। तो आप सोचो इस बात को, देवताएं जो इस सृष्टि पर होके गए, जिन्होंने सृष्टि पर राज किया, कभी उनके कहानियों में जो भी शास्त्र उन्हों की महिमा गाते हैं, उनमें कभी वो बात आई है कि उन्होंने कोई लड़ाई करके राजाई ली? है कोई बात ऐसी शास्त्रों में? कभी लक्ष्मी नारायण ने लड़ाई की थी और लड़ाई से उन्हों को राजाई मिली, कभी सुनी? कोई भी शास्त्र में ऐसी बात नहीं है। और ये भी नहीं बताया गया है कि वो देवता देवता कैसे, उन्हों को ऐसी राजाई मिली कैसे, क्योंकि ये सृष्टि का अंत एक सृष्टि के रचयिता परमात्मा पिता ही जानता है, और कोई नहीं जानता है कि ये सृष्टि बनी कैसे, रची कैसे और चली कैसे, स्वर्ग कैसे था भारत में, कोई को पता नहीं है। परमात्मा जिसने आकर के स्वर्ग बनाया, जिसको कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म, आदि सनातन धर्म। हम कभी कभी सनातन धर्म वाले अपन को कहलाते हैं ना, हम उन्हों से पूछते हैं बताओ वो सनातन धर्म का नाम क्या, अगर आपसे पूछे क्या बताएंगे? सनातन धर्म तो मानते हो ना, पर वो धर्म कौन सा था? तो जास्ती में जास्ती कहेंगे ये हिंदू धर्म ही आदि सनातन धर्म है, पर हिंदू कहलाने वाले वास्तव में उनका धर्म क्या? हिंदू नाम से तो कोई धर्म किसने स्थापन नहीं किया ना। देखो जो भी धर्म है, क्रिश्चियन है उसका डिवाइन फादर क्राइस्ट है, बुद्धिस्ट है उसका धर्म स्थापन करने वाला बुद्ध है ना, ऐसा हर धर्म का धर्म स्थापन करने वाला है। सोचो हिंदू धर्म अगर हम कहते हैं किसने स्थापन किया, कौन है रचने वाला, कोई को नाम, फिर जास्ती में जास्ती कहेंगे ये आदि सनातन है। अच्छा, आदि सनातन वाले कौन, तो ये देवता ही माने जाएंगे। तो आदि सनातन धर्म का नाम देवता ही था, और वो देवताओं को रचने वाला परमात्मा पिता माना जाता है। परमात्मा ने देवताओं को कैसे आकर के रचा, ये भेद स्वयं परमात्मा ही आकर के बताते हैं, जिसके लिए गाया जाता है, जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब तब परमात्मा स्वयं गुप्त रूप में आकर के अधर्म विनाश और एक सत धर्म की स्थापना करता है। वो सत धर्म जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है, वो सत धर्म कैसे स्थापन करता है, वो सारा भेद सारा राज परमात्मा ही बताते हैं। उसी परमात्मा की शिक्षाओं को कहो, उसको ही हम ईश्वरी नॉलेज कहते हैं, जिस कारण इस विद्यालय का नाम ईश्वरी विश्वविद्यालय है। ईश्वर का अंत, ईश्वर का भेद, ईश्वर पिता की पहचान, और ईश्वर पिता ने ये जो सृष्टि की रचना रची, कब रची, कैसे रची, किस प्रकार से रची, वो सारा आदि मध्य अंत की नॉलेज परमात्मा पिता हम बच्चों को दे रहे हैं, और उसके आधार पर ही यह सारी नॉलेज प्राप्त करके अब परमात्मा का आदेश है। जब अभी अंत है इस सृष्टि का, देख रहे हो कैसे सब तरफ से, एक तरफ साइंस ने कितने अच्छी अच्छी इन्वेंशन सुख के साधन बनाए हैं, और सुख के साधन के साथ ऐसी वस्तुएं बनाई है जिससे एक धक से कैसे विनाश हो जाता है, कैसे हो जाता है। एक तरफ साइंस का बल, दूसरे तरफ प्रकृति का प्रकोप है ना, प्रकृति का प्रकोप, धरती कांप, सागर देखो क्या क्या कर लेते, एक धक से कितने का बख ले लेता है। ये सब निशानियां हैं अब इस कलयुगी पापाचार पतित दुनिया का अंत है, जिस अंत की ये दृश्य हमें नजर आ रहा है। अब अंत है तो गुप्त रूप में भगवान उसके आद का कार्य, नई सृष्टि के रचना का कार्य, पावन बनाने का कार्य भी करा रहा है, जो फिर इस नॉलेज के आधार पर, ईश्वरी शिक्षाओं के आधार पर परमात्मा पिता से बुद्धि योग लगा करके जो भगवान के महावाक्य है, हे आत्मा अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा पिता को याद करो, प्यार से याद करो, दिल से याद करो, मन उसमें लगाओ, तो फिर मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भगवान के महावाक्य, जो भगवान को पहचाने, जो परमात्मा को पिता मानकर पिता की शिक्षाओं को जीवन में धारण करे, पिता के साथ अपना पूरा संबंध जोड़ करके उसमें मन लगाकर और एकाग्रता से उनसे शक्ति धारण करे, वह अपने जीवन में अनुभव करेगा बरोबर अनेक जन्मों के पापों का खाता, अर्थात अपने अंदर फिर से वो शुद्धता जागृत होंगी, फिर कोई पाप कर्म नहीं होगा, फिर अपने में दैवी गुणों की जागृति होगी और उन गुणों के आधार से हमारे जीवन में श्रेष्ठ कर्म, शुद्ध कर्म और निस्वार्थ भावना के कर्म होते रहेंगे, जिससे हमारी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनेंगी। और जब ऐसे श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा हो जाएगा, आत्मा पवित्र पावन बन जाएंगी। पतित दुनिया से हमारा बुद्धि योग मोह ममत्व निकल जाएगा, परमात्मा की अटूट याद में हम अपने जीवन में कर्म करते भी न्यारे बनकर चलेंगे और जीवन के अंदर दिव्यता होने के कारण वह आकर्षण बनी रहेंगी, जो सर्व के प्यारे बन जाएंगे। जब ऐसी हमारी जीवन बन जाएंगी, आत्मा पावन बन जाएंगी, तब ये पुराना शरीर छोड़कर फिर जा कर के अपना नया सतो प्रधान तत्वों का बना हुआ शरीर धारण कर इस सृष्टि पर वो फिर पावन सृष्टि में अपना जन्म लेंगे, जबकि इस पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। अभी हमारी दादी जी पहुंच गई है। अभी आपका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हमारी बड़ी दादी जी से आप सबकी मुलाकात हो रही है।
भगवान हमारा साथी है।